We are very happy to see all of you.
हम बहुत खुश हैं आप सभी को देख करके.
Yes, everyone and all together.
सभी लोग एक साथ बोलेंगे.
Yes.
श्लोक रिसाइट करेंगे पीछे पीछे बोलिएगा.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna.
So today, all of us, we are sitting here together in order to discuss something regarding Krishna consciousness.
कोई खड़े नहीं रहेंगे सब लोग पीछे जगह होगी आगे बैठ जाएंगे आपका जगह खाली है यहाँ पर आगे बैठ जाएंगे आपका
हरे कृष्णा सकले बसुन
सभी लोग बैठ जाएंगे बंगाली में बोल रहे हैं पूजी सकले बसुन
सो Today we are going to discuss something very important about Krishna consciousness.
आज हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कृष्ण अवरोहण के बारे में.
And what is important? It is very important to understand that Krishna consciousness is scientific process.
और ये समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण भावनामृत एक वैज्ञानिक पद्धति है.
Scientific process, it means it is science, it is not just blind faith, it is science.
तो scientific मतलब ये एक विज्ञान है ना कि एक अंधविश्वास.
And Srila Prabhupada was emphasizing this point many times that we are not just believers, but our actions are based on knowledge.
तो प्रभुपाद जी बहुत बार इस पर जोर देते थे कि हमारी जो विधि है ये वैज्ञानिक है, ये कोई भावुकता नहीं है.
So scientific approach means we have some particular knowledge, and this knowledge tells us that you do such and such actions, and there is a result. Hare Krishna. There is result which is predicted result. You do particular actions and you get particular predictable result.
तो scientific process का मतलब होता है वैज्ञानिक आधार पर जिसको आप predict कर सकते हैं. ये process को follow करेंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा जिसको आप predict कर सकते हैं.
Because you see what scientists they do, they are trying to understand which actions are leading to which consequences.
तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, हम ये समझने का प्रयास करते हैं किस एक्शन से उसका क्या परिणाम होता है.
So in such way they are trying to control material nature.
और इस प्रकार से हम भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं.
But it is not possible.
लेकिन ये संभव नहीं है.
They are under control of material nature themselves.
पूरे तरीके से भौतिक प्रकृति के हम लोग नियंत्रण में है.
And this situation that they are controlled by material nature is such that they think only what I am able to see exists, and so, what I don't see doesn't exist.
तो वो इस तरह प्रकार से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में वो सोचते हैं कि जो उनको दिखाई देता है केवल वही अस्तित्व में है और जो दिखाई नहीं देता वो अस्तित्व में नहीं है.
It is called gross materialism.
इसको कहते हैं gross भौतिकवाद.
Gross भौतिकवाद. Okay, and of course, even if to speak about some approaches which materialists follows, approaches how they are trying to understand the reality which is around them, there is not only gross materialism, there is agnosticism also, agnosticism.
तो भौतिक प्रकृति को जिस तरीके से समझने का प्रयास किया जा रहा है तो इसमें केवल एक तो क्रॉस मटेरियलिज्म यानी कि जो बात जो भौतिक बात है वो है, लेकिन एक चीज होती है जिसको कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म. एग्नोस्टिसिज्म का मतलब है कि कुछ लोग हैं उनको डाउट है कि सच क्या है क्या
and,
नहीं.
And agnosticism means this conception of agnosticism accepts that there is something which we cannot perceive or which we cannot understand.
तो एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं सकते, इसको समझा ही नहीं जा सकता है.
And this conception of gross materialism is such that only what I am able to perceive exists, and what I am not able to perceive doesn't exist.
हाँ, तो gross materialism का मतलब है जो आंखों से दिखाई देता केवल वही अस्तित्व में है, जो नहीं दिखाई देता वो नहीं है.
And even in our day-to-day dealings, this gross materialism manifests in very simple form. Whatever I am able to understand, it is proper.
तो हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा होता है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमें जो दिखाई देता है, जो हमें महसूस होता है, केवल वही अस्तित्व में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है.
Whatever I am able to understand, whatever I agree with, it is intelligent. And if I don't understand something, means it is something stupid. Just because I don't understand it.
तो हम जो अपनी भौतिक बुद्धि से जो समझ पाते हैं, हम सोचते हैं केवल वही चीज एग्जिस्ट करती है अस्तित्व में है. जो लोग जो चीज बुद्धि से समझ में नहीं आती, हमें लगता है कि वो नहीं है.
And this approach works automatically for some people. Some people they react automatically. I'm not able to understand something means it is some stupid things. People are trying to convince me in something stupid.
तो जो चीज बुद्धि से समझ में आती है लोग उसी को मानते हैं, जो बुद्धि से समझ में नहीं आया तो लोग सोचते हैं कुछ बेवकूफी भरी चीज है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं.
Just because I don't understand.
केवल इस कारण की वजह से क्योंकि वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है.
But because we are limited, it is not possible for us to understand everything. So if we think that something is stupid just because I don't understand it, it means we're were those who whose ability to understand things is supreme and perfect. But it is not so.
तो हम लोग सोचते हैं कि जो हम हमारी बुद्धि से समझ में आ जाए वो ही केवल है क्योंकि लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम लोग लिमिटेड है हमारी जो कैपेसिटी है समझने की वो लिमिटेड है और कई बार हम ये सब मान के चलते हैं कि या फिर हम ये मान के चलते हैं कि हम जो है सुप्रीम है सब कुछ हमारी समझ के अंदर दायरे के अंदर आ ही जाना चाहिए ये हम मान के चलते हैं कि हम लोग परम है और हम सब कुछ समझ सकते हैं ऐसा हम मान के चलते हैं लेकिन सच्चाई है कि हम लोग लिमिटेड है
So in this guru-disciple relationships, it is also important when we don't understand something, it is much more better to accept that, yes, I don't understand, and because of that I will be asking some questions. It is not that I reject just because I don't understand.
So a guru-shishya ka jo sambandh hota hai, usme shishya guru ko prashna poochta hai. To wo ye swikar karta hai ki mujhe kuch nahi pata hai. Isliye main vinamrata se ye mangta hu ki mujhe nahi pata hai. और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ समझने के लिए तैयार हूँ गुरु के मुख से
सो द सेम वे लाइक agnostics दे थिंक दैट देयर आर समथिंग व्हिच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और व्हिच वी कैन नॉट परसीव द सेम वे इन वैष्णव फिलोसफी देयर इज सच कैटेगरी एज अचिंत्या समथिंग व्हिच इज नॉट व्हिच इज अनकंसीवेबल
तो जैसे कि अभी एग्नोस्टिसिज्म के बारे में हमने चर्चा किया था एग्नोस्टिसिज्म का मतलब लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि कुछ चीजें उनको समझा नहीं जा सकता उसी प्रकार से वैष्णव जो परंपरा है जिसमें हम मानते हैं कि कुछ ऐसा सच है जिसको हम समझ नहीं सकते और उसको हम संस्कृत में कहते हैं अचिंत्य
So in this Vedic knowledge, we have something which can be easily understood and which can be proven by practical experience. And there are some parts of the same Vedic knowledge, which is achintya. And if to speak about this second part, you just have to accept it just because it is given by the same authorities.
So, Vedic parampara mein do prakar ki cheeze hain. Ek prakar ki cheeze jinko hum mehsoos kar sakte hain, jisko hum dekh sakte hain, experience kar sakte hain. लेकिन दूसरी चीज को दूसरा हिस्सा वो भी है जिसको हम समझ नहीं सकते अभी अपनी करंट परिस्थिति के हिसाब से तो वो दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं वैदिक परंपरा में
But at the same time, knowledge is given, and Srila Prabhupada was trying his best to translate and write these books. He put a lot of endeavors to do it, and many things actually are explained in these books.
तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया बहुत जोर दिया अपनी किताबों को ट्रांसलेट किया इंग्लिश भाषा के माध्यम से और उन्होंने जो हुई तत्व है इसको समझाने का प्रयास किया हम सभी को
So, if something we are able to understand, we should put endeavors and we should try to understand.
तो प्रभुपाद जी ने जो हमें समझाने का प्रयास किया है उसको समझने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए
And if to speak about
बच्चे
And if to speak about this part which we call achintya, we practice Krishna consciousness. Oh, such silence. Very nice. We practice Krishna consciousness, and by Krishna's mercy, we are able to understand something which we were not able to understand before.
तो कृष्ण आनंद वो पद्धति है जिसके द्वारा जो चीज हम समझ नहीं सकते जिसको हम अचिंत्य कहते हैं उसको हम समझ सकते हैं कृष्ण आनंद की पद्धति का पालन करके
बट बिफोर दैट आवर एंडेवर्स आल्सो शुड टेक प्लेस
लेकिन उसको समझने के लिए हमें प्रयास भी करना पड़ेगा
एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे
और आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं
वी हैव वन वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम
तो एक श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत से
So you see this picture on the altar where Yashoda Mata is trying to bind Krishna to the motor.
तो ये picture आप देख रहे हैं जैसे कि रखी हुई है जहाँ मैया यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है.
So let's read the verse from Srimad Bhagavatam where this process of binding is explained.
तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे भागवत का जहाँ बांधने की प्रक्रिया जो है यशोदा माता की इसके बारे में वर्णन किया गया है.
It is verse 10:9. 17.
श्लोक है 10:9:17 श्रीमद् भागवतम
ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 सो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस शॉर्ट प्रेयर इज दैट आई ऑफर माय रिस्पेक्ट टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड
इसका मतलब है कि मैं अब भगवान को प्रणाम करता हूँ परम भगवान जो हर जगह व्याप्त है
And because we do it, there is a chance that we will understand more than if we would just open the book and we will be trying to understand what is written there just by our own efforts.
तो हम ये प्रार्थना भगवान को करते हैं ताकि हम जो मूल्य तत्व है उसको समझ पाए और उसकी तुलना में अगर हम खुद से प्रयास करेंगे तो उतना नहीं समझ पाएंगे लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हम उसको समझ सकते हैं.
So from the very beginning of this process we are trying to attract Krishna's mercy.
तो हम शुरुआत से ही भगवान की दया जो है कृपा है उसको आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं.
Because again many unconceivable things are described here on the pages of sacred scriptures.
तो ये बहुत ही गूढ़ अचिंत्य चीजें जो है शास्त्र के पन्नों पे लिखी गई हैं जिनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं.
Even Krishna himself, he has name Adokshaja. Adokshaja means that he is unconceivable for gross material senses.
तो कृष्ण का एक नाम है अदोक्षज. अदोक्षज का मतलब है जिसको मन बुद्धि से नहीं समझा जा सकता. इसीलिए कृष्ण का नाम है अदोक्षज.
So basically, it means what? It means that not only some small things we sometimes are not able to understand, but actually it is not a cheap thing to understand Krishna himself.
तो ऐसी बात नहीं कि हम कुछ चीज नहीं समझ पाते. बस सच तो ये कि कृष्ण को समझ पाना आसान नहीं है.
And our movement is called International Society for Krishna Consciousness.
और हमारे आंदोलन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ.
Krishna Bhavanamrita Sangh. And so we want to understand who Krishna is, but he is inconceivable. What to do?
तो हम लोग हमारे आंदोलन का मतलब ही है कृष्ण को कैसे समझें. लेकिन कृष्ण को हमने पहले ही चर्चा की कृष्ण को समझा नहीं जा सकता तो अभी तो क्या करें.
At least something we can do because the sacred scriptures are given and process of devotional service is given and by practicing devotional service we purify our hearts and we can understand more.
तो इसके बारे में कुछ किया जा सकता है. इसके बारे में भक्ति की विधि का वर्णन किया गया है तो भागवत ग्रंथ के अंदर और भक्ति की विधि का पालन करके हम कृष्ण को और ज्यादा समझ सकते हैं.
Okay, translation of the verse. Thus, Mother Yashoda joined whatever robes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Krishna. Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Yashoda, although laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder.
और इस प्रकार से माता यशोदा ने जितनी भी घर की रस्सियां थी सारी इकट्ठी कर ली और कृष्ण को बांधने का प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद ही माता यशोदा असफल रही. फिर पड़ोसी जो गोपियां थी जो बूढ़ी गोपियां हैं वो भी वहां पर आ गईं और वो सब आनंद ले रहे हैं इस लीला का और वो सब मुस्कुरा रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं. और इस प्रकार से यशोदा माता ने बहुत अधिक प्रयास किया और यशोदा माता भी बाद में क्या थी मुस्कुराने लगी और सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हो क्या रहा
है. So, I don't know, maybe we should save time, maybe you should just translate the purport, yeah?
Yeah.
Yeah, just read the purport in Hindi.
Translate them?
Yeah, just without English, just in Hindi. We will save some time, a little bit of time.
So, Prabhupada ji ka tatparya, Shri Prabhupada ki jai.
Jai.
So, ye jo ghatna hai, tare jab hui hai, to Krishna Bhagwan bahut chote bache the, ek ded saal ke honge muskil se. और उनके हाथ कमर वह सब कुछ छोटे थे और उनको बांधने के लिए एक बस छोटी 2 फीट की रस्सी की आवश्यकता थी लेकिन घर की सारी रस्सियां बांध देने के बावजूद भी यशोदा माता जी जो है वो कृष्ण को बांधने में सफल नहीं हुई. क्यों सफल नहीं? क्योंकि ये असंभव है क्योंकि सारी रस्सियां जोड़ देने के बाद भी जो है बांधने में यशोदा माता असफल रही. तो यशोदा माता और बाकी जो गोपियां वो सब सोच रही विचार कर रही कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बच्चा तो वही है जो छोटा बच्चा है अभी थोड़े दिन पहले इसके करदनी भी बांधा था लेकिन फिर भी इसको बांध क्यों नहीं पा रहे ऐसा क्या हो गया अचानक से मतलब ये बुद्धि के परे है कि हो क्या रहा है. तो बहुत आश्चर्यचकित थी. तो पहले जब उन्होंने देखा तो रस्सी कितनी छोटी थी 2 उंगली रस्सी छोटी थी और फिर और रस्सियां जोड़ने के बावजूद भी कितनी छोटी रही
2 उंगली
छोटी. तो कौन सा मैथमेटिक्स सही है मतलब लॉजिक में कैसे फिट होता है. तो यशोदा माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि हो क्या है इतनी रस्सी जोड़ रहे हैं भी तो छोटी उतनी रहती है और हर बार जोड़ रहे उतनी छोटी रहती है. तो इतनी सारी रस्सियां जोड़ने के बाद भी इतना कुछ जोड़ने के बाद भी वो 2 इंच छोटी रही. तो इसके बाद उनको बहुत आश्चर्य हुआ यशोदा माता को और बाकी सारी गोपियों को. तो ये वास्तव में कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन है. किसका प्रदर्शन? कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन है और जो सब माता यशोदा और उनके मित्रों ने देखा.
बहुत अच्छा अनुवादक. Haribol. So here in this purport it is written that this ropes was still two fingers too short. So in this purport it is not mentioned, but Vishwanatha Chakravarti Thakur, one of our acharyas, he explained the meaning of these two fingers. He explains that in order to achieve success in spiritual life, one should have two things. The first one should put his own endeavors in spiritual life, and the second one has to have Krishna's mercy.
So, this card, Vishwanath Chakravarti Thakur tells us two fingers. मतलब है कि पहली उंगली का मतलब है कि हमें पहले अपना प्रयास करना चाहिए भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए. दूसरा चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए भगवान की कृपा.
We put our endeavors, we follow sadhana, practice devotional service, chant Hare Krishna, do all these things, and finally Krishna's mercy is there.
तो हम बहुत प्रयास करते हैं साधना भक्ति के द्वारा, हम भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति की विधि का पालन करते हैं, और भक्ति की जब विधि का पालन करते हैं फिर भगवान जब से प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की कृपा हम तो प्राप्त.
Krishna's mercy not exactly, not obviously in the form of fulfilling our material desires, but first of all in the form of increasing our taste and spirit for spiritual life, for chanting, for reading.
तो कृष्ण की कृपा का मतलब ये नहीं है कि हमें भौतिक जीवन में कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा. कृष्ण की कृपा का मतलब है कि हमारी भक्ति की विधि जो है उसमें रुचि बढ़ती जाती है, भगवान का नाम जब कीर्तन में इसमें हमारी क्या होती है, रुचि बढ़ती जाती है.
एंड ऑल्सो वी हैव सच टर्म इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, रियलाइजेशन, मीन्स वी गेट मोर स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, व्हिच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इट इज आवर inner treasure of the heart.
और जब भक्ति की विधि का पालन करते हैं तो हमें क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, यानी कि हम आध्यात्मिक तत्व को समझ पाते हैं.
And but of course material desires also can be fulfilled if Krishna desires.
और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी भौतिक इच्छाएं भी भगवान पूरी कर दें अगर भगवान चाहे तो.
But if someone thinks that such and such my desire is not fulfilled, means Krishna is not merciful to me, it is not proper, because Krishna knows better what is the best for us.
कई बार भक्ति की विधि का पालन करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं पूरी ना हो, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कृष्ण भगवान जो हमारे ऊपर कृपालु नहीं है, दयालु नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए.
Actually, Krishna's mercy is already with us because we have this opportunity to associate with devotees, to chant holy names and so on.
Actually, कृष्ण की कृपा हम सब पर पहले से ही है. कृष्ण की कृपा के कारण हम लोग भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम लोग ने कीर्तन किया, तो ये सब भी भक्तों का संग भी मिलना ये भी कृष्ण की कृपा ही है ना, बिना कृष्ण की कृपा के ये भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता.
But anyway, we put our endeavors in order to attract more mercy, or at least not to lose the mercy that we have.
तो हम लेकिन और प्रयास करते हैं कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए और भगवान को समझने के लिए अपना प्रयास करते हैं, और हमारे पास जो अभी कृपा है कम से कम उसको तो हम ना खोलें.
Because Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he was saying that don't try to see Krishna, but try to live your life in such a way that Krishna would desire to see you.
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur कहते थे कि संसार में लोग भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों को भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लोगों को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि भगवान आपको आकर के देखें.
So if one is serious about his spiritual life, it is the way to attract Krishna's attention.
तो अगर कोई वास्तव में गंभीर है भगवान को समझने के लिए तो उसको इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए.
And someone can tell, I'm too fallen, I'm not qualified to be serious in devotional service.
कई बार लोग सोचते हैं कि मैं तो योगी नहीं हूँ भगवान को समझने के लिए, तो ऐसा हमें विचार नहीं करना चाहिए.
But in second canto of Bhagavatam we have one verse, Akama Sarva Kamava, Moksha Kama Udaradhih, Tivrena Bhakti Yogina, Yajita Purushak Param, which it says that everyone should be engaged in Tivrena Bhakti Yogina, in intense practice of Bhakti Yoga.
So Bhagavan, ek Bhagavat ka shlok kehta hai, Akama Sarva Kamava, Moksha Kama Udaradhih, Tivrena Bhakti Yogina, Yajita Purusham Param. कहते हैं कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो या बिल्कुल इच्छा नहीं हो, जो भी उसकी स्थिति हो, हर किसी व्यक्ति को तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ भगवान की भक्ति में लगना चाहिए.
And different categories of living entities are mentioned here. Akama, Sarvakama, Mokshakama. Sarvakama means I want anything and everything.
तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बोला गया है, वो है सर्वकाम. सर्वकाम वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए.
Means a lot of material desires in the heart.
उनके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं.
So many material desires that one cannot fulfill these desires during one lifetime. One has to have about 100, 200, 1000 lifetimes just to fulfill all these desires one after another.
तो कई बार लोगों के अंदर इतनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं, उनको लगता है हमारे एक जीवन में ये इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती, हमें 100, 200, 1000 जन्म लेने पड़ेंगे सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए.
Or mokshakama. Mokshakama means desire to be liberated from material world.
Or mokshakama होता है मोक्ष की इच्छा होती है. लोग होते हैं बहुत ही संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं.
And some people really want to be liberated to get out from samsara.
तो कुछ लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं, संसार सागर से बाहर निकलना चाहते हैं, वो कहते हैं मोक्षकाम.
And they think these people who are mainly impersonalists. They think that we don't have to do anything practical, we should just avoid all types of activities in order not to be bound by new karmic reactions.
और ये लोग सामान्यतः ये लोग निराकारवादी होते हैं, ये लोग कहते हैं सारे कर्मों का त्याग करके और जो है हमें बिल्कुल संसार से बस मुक्त होना है, अपनी सारी क्रियाओं को वो त्याग कर देते हैं.
And akama means one who doesn't have desires.
Akam एक और कैटेगरी होती है. Akam ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर इच्छा नहीं होती संसार में भोगने की, संसार भोगने की इच्छा नहीं होती.
Literally it means he has no desires, but because living entity cannot be free from desires, in this case akama means he is free from material desires, but he has spiritual desires.
अकाम का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सच तो ये कि कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं संसार में जिसके अंदर इच्छा ना हो. तो यहाँ पर जो अकाम शब्द का प्रयोग किया गया उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिक इच्छा है, इसको कहते हैं अकाम.
एंड मेनली अकामा मीन्स द मेन डिजायर इज टू सेटिस्फाई कृष्णा, मीन्स समवनस डिजायर्स आर completely 100% synchronized with desires of Krishna.
तो यहाँ पर ये अकाम शब्द जो है उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो लोग केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, उन्हीं के प्रसन्नता के लिए जीवन जीते हैं और मरते हैं. ये शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया, उनकी इच्छाएं जो है कृष्ण की इच्छाओं के साथ बिल्कुल मिली हुई है.
So in this verse, akama sarvakama va, it is told that one can have any qualification, any adhikar, but anyway, tivrena bhakti yogina, bhakti yoga, intense bhakti yoga is recommended.
तो इसमें जितने भी लोग हैं सब जिन कैटेगरी बताई गई है इसमें सबके लिए बताया गया है कोई भी हो सबको क्या करना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति में तीव्रता के साथ लगना चाहिए.
Actually, if practice is not tivrena, if practice is not intense, we cannot expect serious results.
क्योंकि अगर हम भक्ति में तीव्रता से नहीं लगेंगे तो फिर हमको जो है परिणाम अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा आसानी से.
If one wants to become high qualified doctor or engineer or whatever, he has to put endeavors and his absorption should be there. Absorption.
इसी संसार में हम देखते हैं कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है, एकदम से खो जाता है वो पद्धति में,
but Yashoda Mata's absorption was to bind Lord Krishna.
लेकिन यशोदा माता का जो भाव है वो है कि कृष्ण को कैसे बांधे, उसमें उनका मन खोया हुआ है.
She was trying her best.
और वो खुद पूरा प्रयास कर रही थी कृष्ण को बांधने का.
And she was always failing to bind Krishna.
और हर बार माता यशोदा असफल नहीं कृष्ण को बांधने में.
And in the next verse, it is told that after all these endeavors, when Krishna saw Yashoda Mata's perspiration, only after this he decided, okay, let her bind me.
तो अगले श्लोक में बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता जो पसीना पसीना हो गई है तो भगवान कृष्ण जो है माता यशोदा पर दयालु हो उठे.
So it is the process, we put endeavors and then we get Krishna's mercy, but in between of our endeavors and Krishna's mercy, there should be desperation.
Desperation
means I was trying to do my best, but I failed. So unfortunate I am. Only Krishna can help me.
तो desperation का मतलब है कि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी मैं सफल रहा तो only अब केवल और केवल भगवान की कृष्ण की कृपा ही है जिसके द्वारा मैं सफल हो सकता हूँ.
Oh Krishna, please help me.
Hey Krishna, मुझे मेरे ऊपर कृपा करिए.
Ah, because you see, if there is no desperation in between, it doesn't work. Because if the first step, our own endeavors are done from the position that I'm doing this, kartaham iti manite, I'm doing this, then our endeavors in this position cannot attract Krishna's attention and mercy.
So, पहले जब हम प्रयास करते हैं और प्रयास करते करते जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें जो भाव रहता है कर्ता का भाव कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि भगवान को समझ लूंगा लेकिन जब बहुत प्रयास करने के बाद मैं नहीं समझ पाता तो फिर जो है उसके अंदर विनम्रता का भाव आता है उसको पता चलता है कि मैं अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकता.
So our endeavors can attract Krishna's attention if we understand that we are not actually doers but we are trying our best and we tolerate the rest.
तो हम भगवान कृष्ण की कृपा तब आकर्षित करते हैं जब हमें पता चलता है कि हम कर्ता नहीं है और हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि और प्रयास के द्वारा.
So when we fail in our devotional service, when we try to do something and when we fail, it is nice because ultimately it helps us to understand who is actually doing everything.
So जब हम प्रयास करते हैं प्रयास करने के बाद भी असफल होते हैं तो हमें ये सीख मिलती है कि वास्तव में कर्ता कौन है कर्ता हम नहीं कर्ता केवल भगवान कृष्ण.
And of course the ideal way to understand it that actually Krishna is acting, not we are acting, but Krishna or Shri Shri Gaur Nitai. Of course, it is book distribution process.
So,
yeah, yes. The best way to realize that we are not doers, but it's actually it is Shri Shri Gaur Nitai or Krishna or Krishna Balaram or whatever, they are. Doing everything. The best way is book distribution process. Yeah.
तो सबसे अच्छा तरीका इस बात को जानने का कि मैं कर्ता नहीं हूँ और कर्ता जो है भगवान श्री कृष्ण है गौर निताई जी है इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है जैसे आपने कृष्ण में पुस्तक वितरण करते हैं सबको जाकर के घर घर जाकर के
और एनी अदर काइंड ऑफ डायरेक्ट प्रीचिंग
और कोई और प्रयास जिसमें हम लोगों को जाके डायरेक्ट जो है प्रचार करने का प्रयास करते हैं.
So we have three types of direct prachar.
तो हम तीन प्रकार से डायरेक्टली लोगों को प्रचार करते हैं.
It is book distribution, it is prasadam distribution, and it is nagar sankirtan distribution of the holy name.
तो तीन प्रकार से करते हैं. तो पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, और हरिनाम संकीर्तन का वितरण करते हैं.
And in all these cases, we can easily see that some people they accept books or holy name, and some people are trying to avoid it, and we cannot influence on this. Just accept it.
तो हम जब ये करते हैं प्रसाद बांटते हैं किताब बांटते हैं और हरिनाम करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उसको स्वीकार करते हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे जो उसको ना रिजेक्ट कर देंगे.
So Krishna is controlling everything. So what book distributor does? He's praying to Krishna. He's praying to super soul who is situated in the heart of a person to whom he is trying to distribute books. He's praying, please convince that person to take a book.
तो जब हम प्रयास करते हैं प्रयास करने के बाद हमें समझ में आता है कि वास्तव में भगवान कृष्ण जो है वही सर्वे सर्वा है वही नियंता है क्योंकि वही उसके हृदय में बैठे हुए हैं और उसको प्रभावित करते हैं कि किताब लो ये प्रसाद लो ये हरिनाम सुनो ये भगवान कृष्ण ही उसको प्रेरणा देते हैं अंदर से
बिकॉज सुप्रीम लॉर्ड ही टेक्स पार्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ प्रीचिंग. He is invisible, he is unconceivable, but he takes part.
भगवान कृष्ण खुद इस प्रचार की सेवा में स्वयं लगते हैं हालांकि वो दिखाई नहीं देते लेकिन वो है हम सबके हृदय में और इस पद्धति में खुद भाग लेते हैं.
And as soon as book distributor thinks kartaham iti manite, it's me who is distributing all these books, then this waves of proud are spreading around, and people are not attracted by such preacher.
तो कई बार है जो प्रचारक के मन में भाव आता है कि मैं जो लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, किताब बांट रहा हूँ, इस तरीके का भाव आता है, इस तरीके का भाव आता है, उसको अहंकार बढ़ता है कि मैं प्रचारक हूँ, इस प्रकार से वो सोचता है, और फिर जो होता है वो देखता है कि प्रचार नहीं हो रहा, कोई किताब नहीं ले रहा, कोई प्रसाद भी नहीं ले रहा, तो इस तरीके की चीजें होती है, तो फिर उसका जो अहंकार होता है, फिर नीचे उसको जो कर्ता का भाव वो नीचे जाता है फिर.
So for those who dedicate their lives for book distribution, this the way to the quite easy way, but painful but easy way to understand his own position.
तो ये जो book distribution की जो पद्धति है, जिसमें प्रचार करने का प्रयास करते हैं पुस्तक वितरण के द्वारा, ये बहुत अच्छा तरीका है ये समझने का कि हम लोग करता नहीं, कौन है, भगवान कृष्ण करता है. तो ये समझने का एक बहुत सरल माध्यम है कि पुस्तक वितरण के द्वारा.
First, for some period of time, people, they don't take books. Then they start to pray to Supreme Lord. Then they succeed in book distribution. They distribute a lot of books.
So when प्रचारक होता है, शुरू में पुस्तक वितरण करने का प्रयास करता है, तो कोई किताब नहीं देता. लेकिन जब वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, तो बहुत सारे लोग हैं उसकी किताब जो है उससे ले लेते हैं.
And then, because they distribute a lot of books, naturally they are glorified by other devotees in temple, in community, in congregation, and then they become proud.
और फिर जब वो सफल हो जाते हैं इस प्रकार से, वो बहुत सारी किताबें वो कर देते हैं, तो हमारे भक्त लोग दूसरे भक्तों की बहुत प्रशंसा करते हैं कि भक्त जो इतना अच्छा प्रचार कर रहा है, इतना अच्छा पुस्तक वितरण करता है, तो फिर भक्त को अहंकार आता है उसका कि मैं जो हूँ इतना प्रचार कर रहा हूँ.
And this pride manifests in different ways. For example, a person can become very selective regarding those people with whom he associates.
तो जब वो प्रशंसा सुनता है, उसका अहंकार बढ़ता है, तो कई प्रकार से प्रकट होता है. जैसे वो ये सोच सकता है कि मैं कुछ ही नहीं, कुछ लोगों के साथ संग करूंगा, बस बाकी लोगों के साथ संग नहीं करूंगा.
Like one old devotee, old book distributor, he was sharing his experience when he was. Oh, nice music. Бахутача music. He was sharing his experience that he, when he was extremely proud because of extreme success in book distribution, one devotee in temple, he told him Hare Krishna Prabhu, and that devotee automatically, that book distributor automatically was thinking, he was sharing this experience, he was thinking, should I respond to this dog or not?
तो एक भक्त था, वो काफी प्रचार करता था, बहुत सारी पुस्तकों को वितरण किया, और उसको फिर बहुत अहंकार आ गया. फिर एक भक्त ने आके उसको कुछ पूछा होगा, तो उसने पूछा इसको, मैं इसको जवाब दूं भी कि ना जवाब दूं, इस बेवकूफ को, इस तरीके से.
And of course Krishna doesn't like this. He doesn't like proud people.
तो कृष्ण को ये पसंद नहीं, लेकिन अपने भक्तों का अहंकार कृष्ण को पसंद नहीं.
So then this book distributor, he goes on book distribution and for a few hours or days or maybe even weeks, tapasya starts. No one takes books. No one.
So ये फिर कुछ दिनों में जो प्रचारक था, ये फिर से जाता है पुस्तक वितरण करने के लिए. वो देखता है कि कुछ घंटों तक, दिनों तक और हफ्तों तक कोई भी किताब जा ही नहीं रही, कोई किताब नहीं ले रहा उससे.
So after some prayers, they start to take. Then he again becomes proud. So he goes here and there, and one day he becomes stable. He understands that it is much more better to be humble devotee and to pray, and it makes him effective in book distribution.
तो कुछ दिनों बाद फिर उसको अपनी गलती का जो है एहसास होता है कि ये बहुत आवश्यक है विनम्र होना, और भगवान की कृपा को इस प्रकार से ही हम आकर्षित कर सकते हैं.
But again, this feeling of desperation. That, oh Krishna, I cannot do anything, only by your mercy, or Srila Prabhupada, only by your mercy books can be distributed. This feeling, this emotion, it is experience of each and every book distributor who was seriously taking this devotional service. Any book distributor has this experience.
So, Krishna Haramrita mein, jo gambhir jo book distribution hai, unko is baat ki anubhuti hoti hai. ये डेस्परेशन आता है उनके अंदर कि वास्तव में मैं कुछ कर नहीं सकता, जो कुछ भी होता है वो भगवान कृष्ण की कृपा से होता है. मैं करता नहीं हूँ. भगवान कृष्ण जो है अल्टीमेट डूअर है, इसका उसको अनुभूति होता है.
This regarding practical devotional service and regarding life itself, lifetime itself, we have this bhajanas written by Bhaktivinoda Thakur, where Bhaktivinoda Thakur he writes that I just wasted my life uselessly.
तो ये सारे भक्तों को इसका अनुभूति होता है. हमारे एक आचार्य हुए भक्तिविनोद ठाकुर, और वो इसी प्रकार की प्रार्थनाएं लिखते हैं. उसमें लिखते हैं कि मैंने अपना जीवन जो है उसको मैंने व्यर्थ गवा दिया.
And of course, it is not that he wasted his life uselessly, but he speaks this on behalf of other conditioned souls, on behalf of conditioned souls.
तो ये आचार्य जो है ये तो सिद्ध है वास्तव में, लेकिन ये इस प्रकार के गीत जो लिखते हैं हम सबके लिए लिखते हैं, हमको प्रेरणा देने के लिए कि हमने अपना जीवन जो है व्यर्थ गवा दिया.
So it is natural feeling if someone dedicates his life to dedicates himself to spiritual life, and at the end of his life, his feeling is not that I'm so great, I'm so advanced, and so on. Not like this, but if the feeling is like I'm the most unfortunate, and Krishna's mercy is not still there, then it is much more better.
तो इन भक्तों को जो है जीवन के अंत में ये भक्त इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई. इस प्रकार से उनको विनम्रता का भाव आता है.
Even if Krishna's mercy there, devotee wants more mercy.
और अगर मान लो भगवान कृष्ण की कृपा सच में मिल भी जाए उसको, तो भी वो और सोचता है कि मैं और कैसे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करूं. तो इसलिए भी वो विनम्रता का भाव जो है अनुभव करता है, वैसे विनम्र रहता है और ज्यादा.
It is called lauliam. There is material lauliam, material greed, and there is spiritual greed.
तो इसको कहते हैं लौल्यम. एक तो होता है लालच जो भौतिक चीजों के लिए लोग करते हैं, एक चीज होता है लौल्यम. इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रीड. आध्यात्मिक वस्तु को भगवान कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए लालच आता है भक्त को.
So when Madhavendra Puri was passing away, he had two disciples, Ishvara Puri and Ramachandra Puri.
तो माधवेंद्र पुरी जो है एक आचार्य महान, तो जब वो उनके दो शिष्य थे, एक का नाम था ईश्वर पुरी, एक का नाम था रामचंद्र पुरी.
एंड हरि बोल, हरि कृष्णा, व्हाट्स गोइंग ऑन?
बात मत करिए बीच में.
हरि बोल. सो ईश्वर पुरी वाज डूइंग मेन्यू सर्विस फॉर माधवेंद्र पुरी. ही वाज क्लीनिंग हिज टॉयलेट एंड ऑल दिस थिंग्स.
तो ये जो शिष्य थे ईश्वर पुरी बहुत विनम्र थे, अपने गुरु की तन मन धन से सेवा करते थे, उनका मलमूत्र भी साफ करते थे उनके जब वो बूढ़े हो गए थे. तो
रामचंद्र पुरी वॉज ऑफेंडर नंबर वन.
लेकिन रामचंद्र पुरी जो थे वो अपने गुरु के चरणों में अपराध करते थे.
इट वॉज हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू ऑफेंड वैष्णवस.
तो उनके अंदर ये किस प्रकार का अहंकार ऐसा था, वो हमेशा वैष्णवों का उनके प्रति अपराध करते थे.
He was going here and there and was doing this fault finding, and he was saying that that person is such and such and so on and so on. He was taking great pleasure from this. So when Madhavendra Puri was about to pass away, was about to leave his body, he was lamenting that, oh Krishna, I don't see you, I didn't realize you.
So when Madhavendra Puri was in his last days, he was feeling this desperation. He was thinking, hey Bhagavan, I can't do your grace, I can't do your anubhuti. He was expressing his anger.
He was lamenting, but this lamentation, it was not about that he didn't have any spiritual realizations. Of course, he was really exalted, but it was particular spiritual emotion which he was experiencing when he was telling like this, that I don't see Krishna and I don't know who Krishna is. Actually, of course, he was knowing, but it is particular spiritual emotion.
तो ऐसा नहीं था कि उनको भगवान कृष्ण का अनुभूति नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार की बड़ी सिद्ध अवस्था आ जाती है भक्त को. वो सिद्ध होता है, लेकिन सिद्ध होने के बाद उसको भाव भी आता है, और जैसे पहले हमने डिस्कस किया उसको और ज्यादा उसको समझने की, भगवान को जानने की कृपा प्राप्त करने की इच्छा आती है. तो उस प्रकार से वो इसलिए डेस्परेशन में ऐसा विनम्रता का भाव प्रकट करता है कि मैं भगवान की कृपा जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाया.
रामचंद्र पुरी डिसाइडेड टू गिव एन एडवाइस टू हिज गुरुजी.
तो रामचंद्रपुरी जो सिद्धांत अन्वेषण करते थे उन्होंने अंतिम समय अपने गुरु जी को जो है सलाह देने मतलब एक सलाह देने का काम किया उन्होंने.
Which is not so nice according to guru disciple etiquette.
लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं गुरु शिष्य के संबंध में कि शिष्य जो है गुरु को शिक्षा दे.
He told Madhavendra Puri, why you are lamenting? You just relax, you just be peaceful, shanti, shanti, shanti.
तो वो अपने गुरु को शिक्षा दे रहे थे कि अरे आप क्यों अंतिम समय में इतना क्यों विलाप क्यों कर रहे शोक क्यों कर रहे हैं इतना आप बस आराम से शांत रहिए एकदम शांत शांति शांति का संदेश दे रहे थे.
You just meditate on impersonal Brahman and you naturally you will become peaceful and this lamentation will go away.
और जो है आप जो निराकार ब्रह्म के ऊपर अपना ध्यान लगाइए और आपका मन जो है शांत हो जाएगा.
And when Madhavendra Puri heard this advice, he told to Ramachandra Puri to get out.
तो उन्होंने उस प्रकार की सलाह सुनी तो अपने शिष्य को उसने कहा निकल जाओ यहाँ से भाग जाओ यहाँ से अपने.
And he thought, I don't want to see your face because if I will leave my body seeing your face, I don't know where I will go next life.
तो उन्होंने अपने शिष्य को इसलिए भगा दिया उसने कहा कि मैं अगर तेरा मुंह देखूंगा और ऐसी बातें सुनूंगा तो पता नहीं मेरी क्या गति होगी तो उसको बोले तू भाग गया यहाँ से.
From Vaishnava's perspective, it is not auspicious to see the impersonalist's face.
तो वैष्णव सिद्धांत में जो हमारा सिद्धांत जो है भगवान का साकार रूप जो है वो अल्टीमेट रूप है भगवान के निराकार जो एस्पेक्ट है उसको वैष्णव लोग उसको सेकेंडरी मानते हैं वो प्राइमरी नहीं है.
Ideally, if one assumes one sees impersonalist face, he should just jump in Ganges.
अगर कोई निराकार वैष्णव परंपरा में अगर कोई निराकारवादी का मुंह देख ले, तो वो गंगा में जाके स्नान करता है.
Ganges. If Ganges is nearby, but if Ganges is not nearby, what to do?
अगर गंगा पास में है, तो गंगा स्नान कर सकते हैं. पास में नहीं, तो क्या करेंगे?
What to do? Damodar Liva, right? Okay, we go from Chaitanya Liva to Damodar Liva. Okay, so the conclusion of that story about Madhavendra Puri, Ramachandra Puri, Ishvara Puri is that... The conclusion is that don't give advices to Guruji if he doesn't ask.
तो इसका शिक्षा ये है कि गुरुजी को बिना गुरुजी को ये शिक्षा ना दे अगर उन्होंने मांगी ना हो तो.
Especially if you don't know what to suggest.
अगर विशेष तौर से आपको पता ही नहीं कि गुरु का क्या भाव है वो किस मूड में है.
So the tendency is very simple. Ramachandra Puri was offending Vaishnavas and it goes like this. The more Vaishnavas are offended, the more there is a chance that one day the same Vaishnava offender will offend his own guru and it will be the beginning of the end of his spiritual life.
So Vaishnava prat karte karte aisi paristhiti aati hai jab vyakti jo apne guru ke prati aparadh karna shuru kar deta hai aur jab wo guru ke prati aparadh karta hai to fir uske jo adhyatmik jeevan hai uska patan shuru ho jata hai.
It means that even if we consider some particular aparadha, some particular offense to be insignificant, and Vaishnava, some Vaishnava to be insignificant, and that, okay, let offend him, and the consequences will be not so big. Anyway, it accumulates, and the chance to offend spiritual master also grows.
तो कई बार सोचते हैं ये तो छोटा वैष्णव है, नया वैष्णव है. इसके प्रति अपराध करेंगे तो चलेगा लेकिन वो छोटा छोटा अपराध करते हैं वो बड़ा होता जाता धीरे धीरे करके.
So Bhakti Tirtha Swami, Srila Prabhupada's disciple, he was giving advice, when you deal with Vaishnavas, deal with each and every of them in such way that your spiritual life depends on this particular devotee with whom you are associated in this particular moment. As if it depends, the whole your spiritual life, on that one particular person.
तो जब हम वैष्णव के संग में रहते हैं तो हमें उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि मेरी भक्ति में प्रगति जो है इस भक्त के साथ मैं किससे कितना अच्छा व्यवहार करता हूँ इस बात पर निर्भर करता है.
Means one should be very careful, like we are trying, like drivers are trying to be careful on Indian roads, or even more careful.
तो पॉइंट है कि बहुत सावधान रहना चाहिए वैष्णव के साथ जब फीलिंग्स करते हैं
उनके प्रति कोई अपराध ना हो। जिस प्रकार से एक ड्राइवर होता है सड़क पे कार ड्राइव कर रहा होता है तो वो सावधान रहता है किस प्रकार से कार चला रहा है उसी प्रकार से।
And regarding Damodar Leela, so she was trying to bind Lord Krishna. Yashodamata was trying to bind Lord Krishna. And finally she, Hare Krishna, and finally she bound him. And it means that Krishna reciprocates. And we should have hope that one day Krishna will reciprocate. Even if now he doesn't reciprocate, he will do it in future.
तो हर भक्त को ये आशा रखनी चाहिए कि आज हो सकता है भगवान कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन हम अगर प्रयास करते रहेंगे तो भविष्य में भगवान कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होगी।
Sometimes devotees they say, oh, I'm practicing devotional service for 10 years, 15 years, 20 years, and no result.
कई बार लोगों को लगता है कि हम भक्ति कर रहे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, पता नहीं कोई परिणाम आया कि नहीं आया।
Oh, process doesn't work, they say.
कई बार लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि पता नहीं process काम करता है कि नहीं करता है।
But it is not proper approach. Process works. We should just come to the conclusion that process works, but I don't work properly in this process.
लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि actually process काम करती है. लेकिन point है कि हम process को ठीक से follow नहीं करते.
And then this feeling, very important in spiritual life, feeling of desperation comes. And then the chance to get Krishna's mercy, Lord Damodara's mercy grows.
तो लेकिन जब इस प्रकार का ये डेस्परेशन आता है तड़प आती कि इतना प्रयास करने के बाद भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी भक्त जब प्रयास करता है तो भगवान कृष्ण की कृपा फाइनली आती है।
Process is given and we are going through this treatment. We take medicine and we follow diet.
तो ये विधि का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम दवाई भी लेते हैं और साथ ही साथ जो है परहेज भी करते हैं।
Our diet is prasadam. And our medicine is Hare Krishna Maha Mantra.
So, हम दो चीज ले रहे हैं, medicine और diet. Medicine हमारी है वो है Hare Krishna Maha Mantra का जप, और हमारा diet क्या है? हम भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाते हैं.
And if it doesn't work, maybe the patient doesn't take medicine properly.
अगर कोई कहता है ये पद्धति काम नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि उसने ठीक से दवाई ली नहीं है.
So the same way. We should not give up. Anyway, we should not give up. Like Yashodamata, she also didn't give up.
लेकिन जो भी हो हम कभी किसी को प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जिस प्रकार से माता यशोदा ने प्रयास करना नहीं छोड़ा।
If we feel that our inspiration, our enthusiasm goes down, just go to Ghaziabad ISKCON temple and get some more inspiration from Abhiram Govinda Prabhu.
और भक्ति में जो है आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अगर हमारा उत्साह होता है तो हमें निरंतर भक्तों से संग करना चाहिए, गाजियाबाद मंदिर में जाकर के और अभिराम गोविंद में बैठे हुए है ना, इनसे जाकर के मिलना चाहिए और इनसे विचार विमर्श करना चाहिए।
We get this inspiration by associating with each other.
तो हमें ये जो प्रेरणा मिलती है भक्तों के संग, एक भक्तों के बीच में परस्पर संग के द्वारा प्राप्त होती है।
And because of that association, we can come to the conclusion that life goes on, that everything is not so bad like it looks like.
तो ये भक्तों के संग से जो है पर उत्साह बना रहता है और जीवन जो है आगे बढ़ता रहता है.
And then we gather on this program or any other program in Damodar Mass and we offer our lamps to Lord Damodar.
और हम इस प्रकार से प्रोग्राम में जो है आते हैं और भक्तों का संग करते हैं और भगवान यशोदा दामोदर को लैंप ऑफर करते हैं।
एंड दिस फायर सिंबलाइजेस व्हाट सिंबलाइजेस आवर लव।
और ये जो फायर जो है जो हम लैंप ऑफर करते हैं ये हमारा प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए।
Krishna says in Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam Yume Bhaktya Prechhati Tadaham Bhaktya Pahritam Ashnami Pratatmanaha.
भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं पत्र पुष्पम फलम प्रेमयो भक्त्यप्रक्षति तदा भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना।
एंड तदहम भक्ति उपहृतम, भक्ति उपहृतम मींस दैट वन्स ऑफरिंग शुड कंटेन भक्ति, भक्ति शुड बी देयर।
तो भक्ति उपहृतम का मतलब है कि जो भी चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं उसको भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान को अर्पित करें।
सो देन कृष्ण विल एक्सेप्ट इट।
तब भगवान कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं।
So in this Damodarashtaka prayers, it is said that my only desire is to have Lord Bal Gopal always situated in my heart.
So this prayer is a prayer which we have given. Usme ek hi ek shlok bola gaya, so kehta hai ki meri ek maatra iksha yahi hai ki Bhagwan ka jo Bal Gopal swarup hai, ye hamesha mere hriday mein sada virajman rahe aur main iska darshan karta rahu.
So we offer this fire, this lamp, with meditation, that it is my desire, at least at this particular moment when I offer lamp. Because of course we have many other desires, but at least during this meditation, we just try to concentrate our consciousness on this particular desire.
So when we offer Krishna a lamp, so at least in that moment, we should have a wish in our mind. The rest of our mind has a lot of wishes, but at that moment, we should have a wish in our mind.
So we do it and then Krishna reciprocates.
This
Kartika month is special. In Nectar of Devotion it is told, it is written, that even if some devotional service is done during Kartika month by non-serious devotees, anyway, this service is considered to be as if it is done by serious one.
और ये जो महीना चल रहा है इसको कार्तिक का महीना बोलते हैं. तो एक किताब है भक्ति रसामृत सिंधु, उसे वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि ये जो महीना है, अगर इसमें कोई गंभीर नहीं है, कोई मतलब भक्ति में सीरियस नहीं है, ऐसे ही आया लैंप ऑफर कर दिया मतलब, लेकिन तो भगवान कृष्ण ने कृपालु है कि भगवान कृष्ण ऐसे जो गंभीर नहीं है उसको भी मान के चलते हैं, ये गंभीर है, ये सीरियस है, इतने कृपालु हो जाते हैं.
सो लेट्स ट्राई टू ऑफर दिस लैंप with all our sincerity that we have, and we will get even more mercy from Krishna.
So we will try to offer this lamp to God today, and we will get more mercy from Krishna. And we will get more mercy from Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Rama.
Hare Krishna. Hare Rama. Hare Krishna. कोई प्रश्न किसको?
किसी का शंका समाधान हो निकाल लो तो निकल जाए.
हरे कृष्ण.
हरे रामा. No questions.
No कोई प्रश्न?
No questions, right?
One question.
Yeah, please.
There are many things you are saying that people cannot understand.
Yeah.
So could you tell us few of them other than which is related to Krishna or God?
Okay, well, there are different sciences. Even if we're speaking about Prakriti again, there are different sciences. And there are some people who, for example, by their conditioned nature, are not so able to understand mathematics, for example, or some engineering. Very simple, mundane example.
So, you could understand.
Ah, okay. Does it answer on your question?
No, that answers.
Ah, okay. Hare Krishna.
Hare
Krishna. Or, for example, there are some people who are not good in music. They cannot chant. They cannot sing according to the notes, you know, or they don't have this feeling of rhythm or whatever. So any person has particular strengths and particular shortcomings. Yeah. So according to our conditioned nature, something is possible for us, something is not.
So बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं समझ सकते इस संसार में. जैसे music है, for example, कई लोगों को नहीं पता कि सरगम क्या होता है, कैसे notes ऊपर नीचे जाते हैं, कुछ लोगों को idea नहीं. इस प्रकार से बहुत सारी चीजें इस जो प्राकृतिक जगत में भी लोग नहीं समझ पाते हैं.
Hare Krishna. And now we're going to offer these lamps to Lord Damodar with all our sincerity that we have.
And we will offer the lamp to Lord Damodar with all our sincerity that we have.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Bol.
Hare Rama.